नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आज आपको सुना रही हूं अनुराग शर्मा जी के ब्लॉग बर्ग वार्ता से उनकी एक कहानी,
जाके कभी न परी बेवाई।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग में अपनी बात अपनी भाषा में।
रंग डालने का समय गुजर चुका था, पिचकारियां रखी जाने लगी थी, फिर भी होली के रंग हर तरफ बिखरे थे। लाल हरे लोगों के बीच सुनहरी या सफेदी पुते चेहरे भी हर तरफ दिख रहे थे। बरेली में यह समय था मोर्चा लड़ने का। मोर्चे की परंपरा कितनी पुरानी है पता नहीं, मगर मोर्चा लड़ने के लिए लगभग हर घर में पीढ़ियों पुराना पीतल का हैंडपंप मिल जाएगा। यह पंप एक बड़ी परंपरागत पिचकारी जैसे होता है। एक बड़ी फूंकनी के भीतर एक छोटी फूंकनी, एक सिरे पर तीखी धार फेंकने के लिए पतला सा मुंह और दूसरे छोर पर जुड़ा हुआ एक लंबा सा रबड़ का पाइप, जिसका दूसरा सिरा पानी से भरे लोहे के बड़े कड़ाह में डाल दिया जाता था। लोहे की वर्गाकार पत्तियों को जोड़कर बनाए हुए यह कड़ाह किसने बनाए थे यह भी मुझे नहीं मालूम, मगर इतना मालूम है कि ये पूरा साल किसी नुक्कड़ चौक या चौराहे पर उपेक्षित से पड़े रहते थे, सिवाय एक दिन के। धुलेंडी यानी बड़ी होली वाले दिन 12 बजते ही हर ओर दो दो लोग अपने अपने पंप लिए हुए मोर्चा लड़ते नजर आते थे। दोनों खिलाड़ी अपनी आंख बचाकर अपने प्रतिद्वंदी की आंख को निशाना बनाते थे। जो मैदान छोड़ देता उसकी हार हो जाती थी और उसकी जगह लेने कोई और आ जाता था। हमारा पंप औरों से भिन्न था, तांबे का बना और काफी छोटा। हल्के पंप की धार दूसरे पंपों जैसी जानलेवा नहीं थी, मगर उसे चलाना भी औरों से आसान था। इसी पंप का कमाल था जो मैं मोर्चे में कभी भी नहीं हारा, सामने कोई भी महारथी हो। वज्रांग के लिए यह सब नया था, वह दिल्ली से आया था। हम दोनों एक ही उम्र के थे, उसका दाखिला भी मेरे ही स्कूल में हुआ। वह खिलाड़ी भी था और पढ़ाकू भी। शिक्षकों का चहेता था लेकिन काफी गंभीर और अंतर्मुखी। जल्दी ही हम दोनों में दोस्ती भी हो गई। उसके पिता नहीं थे, माँ एक सरकारी बैंक में काम करती थी और 8-10 महीने पहले ही उनका तबादला बरेली में बड़ा बाजार शाखा में हुआ था। बरेली में यह उसकी पहली होली थी। वह बहुत ही उत्साहित था, खासकर हम लोगों को मोर्चा लड़ते देखकर। उसके उत्साह को देखकर मैंने जल्दी जल्दी उसे पंप का प्रयोग बताया। सामने एक दूसरा पंप मांगकर पानी से आंख बचाने और सामने वाली आंख पर अचूक निशाना लगाने की तकनीक भी सिखाई। कुछ ही देर में वह अपनी बाजी के लिए तैयार था। मोर्चे खेल खेलकर जब हम दोनों के ही हाथ थक गए तब हमने घर की राह ली। वज्रांग बहुत खुश था, पहली बार उसने होली का ऐसा आनंद उठाया था। अपनी प्रकृति के उलट आज वह खूब बातें कर रहा था। उसने बताया कि उसके पिताजी के जाने के बाद से क्या होली क्या दिवाली सब उत्सव बेमजा हो गए थे। वज्रांग और उसके माता पिता की छोटी सी दुनिया बहुत खूबसूरत थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पिता एक बैंक में काम करते थे जबकि माँ घर पर रहकर वज्रांग की देखभाल करती थी। इतवार का दिन था। उस दिन वज्रांग को हल्का सा बुखार था। उसके ना करते करते भी पिताजी तिलक नगर चौक तक चले गए उसके लिए दवा लेने। 10 मिनट की कहकर गए थे, मगर दरवाजे की घंटी बजी 4 घंटे के बाद। देखा तो दो पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने ही वह दुखद खबर दी। ढोल ताशे की आवाज ने याद दिलाया कि होली की वार्षिक राम बरात का जुलूस निकल रहा था। हम दोनों ने रुककर कुछ देर तक उस अनोखी रंग बिरंगी शोभा यात्रा का मजा लिया और फिर जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगे। शाम को गुलाब राय के होली मिलाप के लिए रगड़ रगड़ कर रंग जो साफ करना था। आज के दिन जल व्यवस्था का भी कोई भरोसा नहीं था, देर होगी तो शायद नहाने लायक पानी भी मुश्किल हो। कुल्हाड़ा पीर के चौराहे पर एक मजमा सा लगा हुआ था, भीड़ के बीच में से इतना ही दिखा जैसे लाल अबीर में लिपटी हुई कोई मानव मूर्ति निश्चल पड़ी हो। भीड़ से पूछा तो किसी ने कहा,
लौट रहे हैं भंग के रंग में, होली है भैया।
भीड़ में से ही किसी और ने जयकारा लगाया, होली का मैया की जय। सारी भीड़ ने समवेत स्वर में कहा जय और अपने अपने रास्ते लग गए। रंगीन मूर्ति अब अकेली थी। वज्रांग उत्सुकतावश उधर बढ़ा तो मैंने हाथ पकड़कर उसे रोका। नशेड़ियों का क्या भरोसा, गाली वगैरह जैसे मौखिक अपमान तो उनके लिए सामान्य बात है, कभी कभार वे हिंसक भी हो उठते हैं। वज्रांग हाथ छुड़ाकर मूर्ति के पास पहुंचा और उसे पकड़कर हल्के से हिलाया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मूर्ति ने एक बार आंखें खोली और फिर बिना कुछ कहे शांति से बंद कर ली। वज्रांग ने दिखाया कि उसके सर के नीचे का लाल द्रव रंग नहीं रक्त था। तब तक मैंने मूर्ति के रंगों के पीछे छिपे चेहरे को पहचान लिया था। वह भग्गा दही वाला था, बजरिया के पीछे चौक में कहीं रहता था। वज्रांग ने पास से गुजरते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर रोका और भग्गा के निढाल शरीर को रिक्शा पर चढ़ाने लगा। उसका उद्देश्य समझकर मैंने भी सहायता की और उसे बीच में करके हम दोनों इधर उधर बैठ गए। तभी मुझे उस तरफ का ही एक लड़का बारात से वापस आता दिखा, तो मैंने उसे भग्गा के घर वालों को गंगवार नर्सिंग होम भेजने को कहा। जब तक हम लोगों ने भग्गा को भर्ती कराया, उसके परिवार के लोग वहाँ पहुँच गए थे। कुछ ने उसे संभाला और बाकी हमसे सवालात करने लगे। मैंने देखा कि अभी तक इतना साहस दिखाने वाला वज्रांग एकदम से बहुत विचलित सा लगा। मैंने भग्गा के घर वालों को सारी बात बताई और वज्रांग को साथ लेकर घर आ गया। शाम को होली मिलन के लिए तैयार होकर जब मैं वज्रांग को लेने पहुंचा, तो भग्गा के बेटों को उसके घर से निकलते देखा। मुझे देखकर वे दोनों रुके और बताया कि भग्गा बिल्कुल ठीक है। अगर हम दोनों उसे नहीं देखते तो शायद वह ज्यादा खून बहने से ही मर गया होता। मरने की बात सुनते ही एक सिहरन सी दौड़ गई। वज्रांग अपने कमरे के एक कोने में जमीन पर बैठा था, मोड़े हुए घुटनों को दोनों हाथों से घेरे हुए। उसने सर उठाकर मुझे देखा, गीली आंखों के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश की। मैं साथ ही बैठ गया। भग्गा ठीक है, उसने कठिनाई से कहा। हाँ, मैंने उसे बताया कि मैं उसके बेटों से मिल चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि सर से साया हटने का मतलब क्या होता है, उसने रुक रुक कर किसी तरह कहा। एक महीने तक घर से नहीं निकल सका था मैं। एक महीने बाद तिलक नगर जाकर उन दुकानदारों से बात करने की हिम्मत जुटा पाया था। घातक हृदयाघात हुआ था पापा को, और उन दुकानदारों ने जो कहा उस पर आज भी यकीन नहीं आता है।
हमें क्या पता भाई, हम समझे कोई पड़ा होगा पी के, होश आएगा, उठ के अपने घर चला जाएगा।
जिंदगी भर सबके काम आने वाले मेरे पापा ने कभी किसी नशे को हाथ नहीं लगाया था।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।